مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے ایک انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے خوراک اور خوراک کی سیفٹی کا۔ پاکستان دنیا بھر میں معیاری خوراک پیدا کرنے والے اہم ملکوں میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود ملک میں لاکھوں لوگ معیاری خوراک سے محروم ہیں، اور لاکھوں افراد، خاص طور پر خواتین اور بچے، غذائیت کی قلت کا شکار ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے، اور پاکستان میں خوراک اور غذائیت کی قلت کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، یہ ہیں وہ موضوعات جن پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج کی یہ راؤنڈ ٹیبل ترتیب دی ہے، جس میں بات کرنے کے لیے ہم نے خوراک کی سیفٹی اور غذائیت سے متعلق مقتدر ماہرین کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر ظہور، جو اس وقت ورلڈ فوڈ پروگرام اسلام آباد کے ساتھ خوراک کے تحفظ سے متعلق ایک پروگرام سے وابستہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی رحیم یار خان کے فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر محمد فرحان جہانگیر چغتائی۔ ہمارے ساتھ ہیں ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی کے فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن کے پروفیسر ڈاکٹر انوار ملک، اور ہمارے ساتھ اب سے کچھ دیر کے بعد ہوں گے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ سیفٹی اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس۔ ہمارے ساتھ ہوں گے خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے او آر آئی سی شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایم سیف رحمان رحیم یار خان سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کوالٹی اینڈ ریگولیٹری افیئرز پاکستان ڈیری ایسوسیشن اسلام آباد کے سربراہ اور ایک فوڈ سائنٹسٹ ڈاکٹر انیس قریشی، جو خلیج اور پاکستان میں ڈیری اور مشروبات کی انڈسٹریز میں نمایاں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر ظہور سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر طاہر ظہور صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔ جی
بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ پاکستان میں جو خوراک پیدا کرنے کے معاملے میں دنیا میں ایک بہتر مقام رکھتا ہے، ایسا کیوں ہے کہ لاکھوں لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں، اور ایسا کیوں ہے کہ وہاں لاکھوں لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں، تو وہاں خوراک کی سیکیورٹی اور سیفٹی کی صورتحال کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔
جی بہت شکریہ یاسمین جمیل، آپ نے بہت اہم ٹاپک پہ جو ہے نا وہ بات کا آغاز کیا۔ جس طرح سے ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے ہم تو اس چیز کو جو ہے نا وہ کافی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی اس کو جو ہے نا وہ ٹیک اپ کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ فوڈ سیکیورٹی کا جو مطلب ہے نا ایکچولی وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت تمام انسانوں کو دنیا میں ان کی ایک وافر مقدار میں خوراک جو کہ غذائیت سے بھرپور اور سیف ہو ان کو ملنی چاہیے ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے۔
ٹھیک،
یہاں میں تھوڑا سا ذکر کروں گا اس میں کچھ ہمارے جو ہے نا وہ ایسی ٹرمز جس کو بولا جاتا ہے لائک فوڈ سٹیبلٹی۔ اب فوڈ سٹیبلٹی جو ہے نا وہ دیٹ ریفرز کے ابلٹی ٹو اوبٹین فوڈ اوور دا ٹائم، یعنی کہ جو کہ ہر وقت اویلیبل ہو اس کو جیسے سٹیبلٹی کہا جائے گا۔ فار ایگزامپل اس میں گندم ہے جو کہ پاکستان میں ایک اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے چل رہی ہے۔ دوسرا ہے فوڈ ایکسیس جو کہ ریفر کرتی ہے کہ آپ کتنا اس کو افورڈیبل ہے آپ کے لیے، اور اس کی ایلوکیشن جو ہے نا وہ فوڈ کی کسی بھی انڈیویجول کو یا ہاؤس ہولڈ لیول تک جو ہے وہ کتنی میسر ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کی فوڈ کی اویلیبلٹی، اس کا مطلب یہ کہ ریلیٹ ٹو سپلائی آف فوڈ تھرو پروڈکشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن اور مارکیٹ میں اور پھر کنزیومر تک۔ یہ تین چار فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ان کے فیکٹرز کا جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں پہ ان کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب یہ فیکٹرز آتے ہیں تو ان میں ایشوز آگے کیا آتے ہیں، کچھ لوگ تو جو ہے نا وہ افورڈیبل نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں میں ان ایون ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، کچھ ایسی پاکٹس ہیں پاکستان کی جہاں پہ فوڈ جو ہے نا وہ پہنچ ہی نہیں پاتی، چونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ انسانیت ہے، وہاں پہ پہنچنے کی ضرورت بھی ہے، جس میں گورنمنٹ پالیسیز کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इसमें जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, एक तो सबसे पहला लिटरेसी रेट है जो कि 57%, जिसमें जो है ना वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो इलम ही नहीं है कि हम फूड अगर यहाँ से मुयसर नहीं है कहाँ से हासिल कर सकते हैं, या उसकी मैनेजमेंट या उसकी सप्लाई चेन को कैसे वो प्रॉपर कर सकते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे गैप्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में हाई माल न्यूट्रिशन रेट है जो कि गजाइत की कमी जो है ना, जो स्टंटिंग है वो 44% है और वेस्टिंग जो है वो तकरीबन 15% है, जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2011 का जो डेटा हमें बताता है। इसके अलावा हिडन हंगर है, लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने खाना क्या है, जिसको हम कहते हैं कि ज़रूरी अज्जा, जिसमें जो है ना वो ट्रेस एलिमेंट्स कैल्शियम पोटाशियम और उसके अलावा वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जिन्हें कहते हैं, वो माइक्रो एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी के लिए, उन लोग उनको जो है ना वो सही तरह से टेकअप नहीं कर पाते। ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग वन वे और दी अदर वे वो फूड सिक्योरिटी से जो है ना वो महरूम रहते हैं। तो इसमें ऐसी जगह पे आके हमें जरूरत है कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बने, जैसे कि सिंध का इलाका है
जी,
बलोचिस्तान का इलाका है,
तो
माल न्यूट्रिशन के रेट ज्यादा।
जी, डॉक्टर ताहिर साहब, हम आपसे अब इस बात पर भी आगे बढ़ेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन पहले हम उनके असबाब पर गौर कर लें कि आखिर ग़िज़ाइत की किल्लत क्यों है, आखिर खुराक लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही। आपने कुछ पॉइंट्स दिए कि एक तो गुर्बत है, एक एजुकेशन की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो मैं पॉइंट उठाना चाहूँगी वो ये कि बावजूद इसके कि लोगों को लोगों की इतनी इस्तात है कि वो खुराक हासिल कर सकें, लेकिन इसके बावजूद भी जो ग़िज़ा उनको मिलती है वो मयारी नहीं होती, वो मिलावट वाली होती है। पाकिस्तान में खास तौर पर ये बहुत बड़ा मसला है कि
दो चीजें हैं ना। मैं इसको इस तरह से जो है ना वो फूड सिक्योरिटी के बाद इसको बाइफरकेट करूंगा फूड सेफ्टी में, एंड देन अल्टीमेटली न्यूट्रिशन। जो फूड सेफ्टी है वो जो है ना मियार के मुताबिक अगर ना हो तो फूड अनसेफ्टी होती है ना। वो फूड सेफ्टी में तो हम ये कहते हैं कि भी हर बंदे को गजाइत से भरपूर खुराक, महफूज खुराक मिलनी चाहिए जो कि किसी भी जरासीम से पाक और किसी भी डिजीज के जो है ना वो बायस ना बन सके।
जी जी।
उसमें वो फूड सेफ्टी के हवाले से अब पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे पहले, वहां पे तो उन दौर में, पुराने दौर में तो जो है ना लोगों का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आज के दौर में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना वो नंबर वन है, जिन्होंने 2000 में ये पॉइंट्स उठाए फूड सेफ्टी और अथॉरिटी के एस्टेब्लिशमेंट के।
ठीक।
और अल्हम्दुलिल्लाह उसके सिलसिले में तसलसल में जो है ना वो 2011 में जाके जो है ना ये पंजाब फूड अथॉरिटी का पूरा क्याम हुआ और उसके स्टैंडर्ड वगैरह। लेकिन आज आप अगर देखें चंद सालों में पंजाब फूड अथॉरिटी जो कि सबसे पहले लीड ले चुकी है पाकिस्तान में सेफ फूड प्रोवाइड करने के लिए, आज आपको हर शहर में नजर आएगी, वहां पे जाके वो लोग चेक भी करते हैं फूड को उसकी।
डॉक्टर ताहिर साहब, ये
हम
बिल्कुल आपने सही कहा, हम इस पर भी आएंगे। हमारे साथ अभी कुछ देर के बाद मौजूद होंगे कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस भी, जो पंजाब फूड बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस साहब, पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए पहले उनको गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में फूड की जो पॉलिसी है सेफ फूड सेफ्टी की वो क्या है और उस पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मान यूनुस साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आज इकट्ठा किया है। उसकी मुनासिबत भी है वर्ल्ड फूड डे के हवाले से, और मेरा ख्याल है कि पंजाब फूड अथॉरिटी आज पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा काम कर रही है जो अनप्रेसिडेंटेड है, और इसका डेफिनेटली क्रेडिट जो है वो हमारे उन तालीमी इदारों को जाता है जिनके प्रेशर में या जिनकी कहने पर या जिनके वजह से या जिनके जोर लगाने से हुकूमत ने ये इदारा कायम किया।
तो क्या पहले आप
कायम किया गया तो
यूनुस साहब आप पहले सबसे पहले बताइए कि फूड सेफ्टी की पॉलिसी क्या बन चुकी है पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, और अगर वो है तो उसमें क्या जाब्ते हैं उसके, और उन जाब्तों पर किस हद तक अमल हो रहा है।
जी मैं एक्चुअली यही आपको चाह रहा था कि मैं ब्रीफ कर दूं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी का जब क्याम सन 2011 में आया तो उससे पहले 1960 के हमारे प्योर फूड रूल्स हुआ करते थे जिनके मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ जो खाने पीने की अशिया है उनको उनके स्टैंडर्ड्स का तायुन करके उनको रेगुलेट किया जाता था, और वो इतना ज्यादा पॉपुलर निज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से ये महसूस किया गया कि एक इंडिपेंडेंट इदारा तश्कील दिया जाए जिसमें एक साइंटिफिक पैनल कंसीव किया गया, जिसमें तमाम जो हमारे एकेडेमिया है, जिसमें तमाम जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमारे जो रिसर्च से एसोसिएटेड लोग हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रही हैं और हमारा जो प्रोड्यूस कर रही हैं हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट मार्केट में, उन पे मुश्तमिल एक साइंटिफिक पैनल जो है वो कंसीव हुआ उस कानून के अंदर, जिस साइंटिफिक पैनल ने मुख्तलिफ रेगुलेशंस बनाने थे या स्टैंडर्ड्स का तायुन करना था मुख्तलिफ फूड कमोडिटीज़ के लिए। तो उसके नतीजे में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड्स का सेट तैयार हुआ जो कि हम दो दफ़ा रिवाइज कर चुके हैं। इन साइंटिफिक पैनल के अंदर हमारे पास 30 से ज़ायद PhDs मौजूद हैं और वो भी मुख्तलिफ फूड कमोडिटीज़ के ऊपर गाइड करते हैं। इस वक्त 16 डिफरेंट कैटेगरीज के फूड्स को ना सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं बल्कि उनके स्टैंडर्ड्स को अपने साइंटिफिक पैनल के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद से उनको नोटिफाई करके उनको, ये तो पहला पार्ट हो गया कि हमने उसका प्रोसेस आइडेंटिफाई कैसे किया, यानी सबसे पहले हमारे साइंटिफिक पैनल ने उनके स्टैंडर्ड्स का तायुन किया। उसका सेकेंड पार्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इंटरेस्टिंगली लॉज तो शायद इससे पहले भी मौजूद थे लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी शायद रोबस्ट तरीके से नहीं होती थी। मेरा ये ख्याल है कि जो बाकी प्रोग्राम में मेहमान है आप उनसे भी ये बात जरूर पूछिएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी का हॉलमार्क ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने उन रेगुलेशंस के ऊपर अमल दरामद करवाया, यानी कि जैसे कंसीव किया हमारे साइंटिफिक पैनल ने उस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन बनाई गई। पहली दफा पंजाब में ये देखने में आया कि फूड स्टैंडर्ड को अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन मिली, खा वो छोटा बिजनेसमैन था, शायद खा वो बड़ा था, खा वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, हमारे जो स्टैंडर्ड्स थे वो सबके लिए बराबर थे और हमारे कानून जो है वो सबके ऊपर अभी भी बराबर इंप्लीमेंट होते हैं। हम अपने तमाम स्टैंडर्ड्स को अक्रॉस द बोर्ड इंप्लीमेंट करते हैं और आज पंजाब के हर जिले के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो आपको काम करती हुई नजर आ रही है। अगर आप छोटे बिजनेसेस की बात करें तो छोटे बिजनेसेस को भी रेगुलेट कर रहे हैं, बड़े बिजनेसेस की बात करें तो उनको भी रेगुलेट कर रहे हैं। जितनी भी फूड कैटेगरीज हैं, जो पैकेज फूड है उसकी सालाना इंस्पेक्शन का शेड्यूल है, जो अनपैकेज है उसको हम रूटीन में इंस्पेक्ट भी करते हैं, और जहां कहीं सेफ्टी के ऊपर किसी किस्म का कोई वायलेशन मिले तो जब तक करेक्टिव मेजर ना लिए जाए तब तक उन फूड्स को दोबारा मार्केट में नहीं आने दिया जाता, और अगर किसी जगह पर कोई कमोडिटी जो है वो सेफ्टी के टेस्ट को फेल करती है तो उसको फौरी तौर पर मार्केट से न सिर्फ रिमूव किया जाता है बल्कि जो फूड बिजनेस है उसको इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर के तहत बंद करके वो करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद उस फूड को दोबारा प्रोड्यूस करने की इजाजत दी जाती है। इसकी हम आपको बेतहाशा मिसालें दे सकते हैं, जिसमें हमने पानी की जो सैंपलिंग है वो मुमकिन बनाई है। साल में 4 दफा हम तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चेक करते हैं, डेयरी इंडस्ट्री को हम साल में 4 दफा चेक करते हैं, मुख्तलिफ जो मसाला जात है उनको हम चेक करते हैं। मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊंगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने पाकिस्तान में बल्कि इस पूरे के पूरे खित्ते में पहली दफा मसाला जात को पैक करवाया, यानी कि जो खुले मसाले होते थे यहाँ पर मसाले खुले बिका करते थे, उन मसालों को एक रेगुलेशन के तहत हमने पैकेज किया और उसको पैकेज करने से सबसे पहले हमें ये फायदा हुआ कि हमने उसकी हाइजीन को इंश्योर किया, दूसरे नंबर पे हमने उसकी ट्रेसेबिलिटी क्रिएट की, तीसरे नंबर पे हमने उसकी एडल्ट्रेशन को भी कंट्रोल किया, बिकॉज जब ट्रेसेबिलिटी नहीं होती थी तो इस बात का पता लगाना बिल्कुल तकरीबन नामुमकिन होता था कि उसमें एडल्ट्रेशन कौन कर रहा है। आमतौर पर मसालों में रंग की और मुख्तलिफ किस्म की एडल्ट्रेंट्स डाले जाते थे मसालों की तादाद को बढ़ाने के लिए और उसमें केमिकल ग्रेड कलर दिलाया जाता था उसको डिफरेंट टेक्सचर देने के लिए या डिफरेंट रंग देने के लिए। तो जब हमने उनको पैकेज करवाया तो ना सिर्फ हमने उसको सेफ किया फ्रॉम हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू बट हमने उसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ किया और साथ साथ हमने उसकी ट्रेसेबिलिटी क्रिएट की ताकि वो कहाँ बन रहा है, किन कंडीशन में बन रहा है, कब बनाया गया है, कब उसमें एक्सपायर होना है, ये मुमकिन हो। ये बहुत चैलेंजिंग काम था हमारे लिए क्योंकि पाकिस्तान में, पंजाब में बिलखसूस, इस रीजन के अंदर मसालों को हाथ से चेक करके खरीदने का रवाज था इस रिवाज को तोड़ा और लोगों को एजुकेट किया और जो फूड बिजनेसेस थे उनको भी कन्विंस किया कि उन्होंने ये काम करना है। साइंटिफिक पैनल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ इस बात को आइडेंटिफाई किया कि ये जो खुले मसाले हैं ये हमारे हमारे लिए बहुत बीमारियों का बायस बन रहे हैं, खासतौर पर मैदे की बीमारियों का बायस बन रहे हैं, और ना सिर्फ इस बात को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया बल्कि उस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पाइपलाइन में मजीद काम होने वाले हैं उसमें जो बहुत बड़ा काम हमारे जिम्मे है वो खुले दूध की तरसील को रेगुलेट करना है, जिसको जिसके लिए हमने मिनिमल पास्टराइजेशन का कानून बनाया हुआ है, जिसके लिए हमारा इरादा यह है कि हम सन 2022 में खुले दूध की तरसील जो है उसको भी रेगुलेट करेंगे, और उसको भी मुमकिन सिर्फ ये तभी मुमकिन होगा जब उस दूध को किसी जो है वो पैकेजिंग के तहत जो है वो बेचा जा सकेगा और पास्टराइज करके बेचा जाएगा, क्योंकि दूध अब एक ऐसा चैलेंज है हमारा जिसमें कि देखा यह गया है कि दूध की जो इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन है खुली शक्ल में जब वो जाता है तो ना सिर्फ उसमें एडल्ट्रेशन होती है, वो अनसेफ भी होता है और उसमें बहुत किस्म
तो
के,
आप बिल्कुल दूध के साथ साथ आपने आपने कहा कि पानी की फिल्ट्रेशन जो प्लांट्स हैं उनको भी आप चेक करते हैं, और ऐसा मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब में तो बहुत ही सूरत हाल ठीक ठाक हो चुकी है, और इंशाल्लाह अगर आप ऐसे ही काम करते रहे तो ज़रूर होगा। मोहम्मद उस्मान यूनस साहब आप हमारे साथ रहिए, हमने आपको इसलिए प्रोग्राम में पहले शामिल कर लिया कि आपको शायद ज़्यादा देर आप हमारे प्रोग्राम में ना बैठ सकें, वरना हमने पहले तो बात करनी थी कि वजूहात क्या हैं, ऐसा क्यों है कि लोगों की सेहतें ख़राब हो रही हैं, मयारी खुराक क्यों नहीं मिल रही। तो इस सिलसिले में अगर आप हमारे साथ थोड़ी देर और बैठें तो हमारे जो मेहमान हैं वो भी मुमकिन है आपसे कोई सवाल करें, और हो सकता है कि आप उनके जो जवाब दें वो हमारे आम सुनने वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। गुफ्तगू में हम इस वक्त हम शामिल करेंगे यूनिवर्सिटी एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनवार मलिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनवार मलिक साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
तो पहले हमने हल बता दिए यूनुस साहब ने, लेकिन हम अपने सुनने वालों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे और आपके थ्रू बताना चाहेंगे कि जब गैर मयारी और खालिस ग़िज़ा नहीं मिलती और मिलावट वाली खुराक मिलती है तो लोगों की सेहतों पर, खासतौर पर बच्चों और ख़वातीन की सेहत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और ये मसला कितना संगीन बन चुका है।
जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे चांस दिया। सबसे पहले मैं कैप्टन उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि जितनी मेहनत और लगन से ये फूड सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं, पाकिस्तान को इन्होंने एक रोल मॉडल बना दिया है। मैं खुद इनके फूड अथॉरिटी साइंटिफिक पैनल का मेम्बर हूँ और मुझे अंदाजा है कि कितनी केयर और कितनी कोशिश से ये स्टैंडर्ड बनवा रहे हैं हम लोगों से और किस तरह उनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। जहाँ तक बात है बीमारियों की और मिलावट से जो ये अपना जो असरात मुरतब हो रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात दूध की, मैं अभी कैप्टन उस्मान साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, तो दूध में जो मिलावट हो रही थी उसका वाहिद हल यही था कि उसको आप पास्टराइजेशन की तरफ ले जाएं। उससे मेरे एक दो आर्टिकल भी आ चुके हैं न्यूज़पेपर में, और दूध में मोर देन 17 से ज्यादा जो है मिलावट शुदा चीजें आती हैं, और जो ऐसे ऐसे आते हैं कि जो दूध ज्यादा देने वाली जो ड्रग्स हैं, जो हार्मोन्स हैं वो आते हैं, और इसमें हमारे जो बच्चियां हैं उनको प्रॉब्लम हार्मोनल इश्यूज पैदा हो रहे हैं, उनके लिए लिवर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किडनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये एक दूध की वजह। इसके बाद आप आ जाएं कि जो मसाला जात और जो ये ऑयल जो ओवर इसकी जो फ्राइंग होती है, मैक्सिमम हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं 7 फ्राइंग तक जो कैनोला ऑयल है उसको हम फ्राई कर सकते हैं 27 फ्राइंग, लेकिन यहाँ पे देखा गया था कि बहुत ज्यादा फ्राइड ऑयल और इसमें जो कलर कंपाउंड होते थे वो कार्सिनोजेनिक इन नेचर वो बन जाते थे और लोगों को जो है बीमारियाँ। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ये फूड अथॉरिटी जब से एक्टिव हुई है वो उसके बाद ये जो रेशो है इन बीमारियों की कम होती जा रही है, ये हार्मोन से रिलेटेड जो बीमारियां इनकी कम है, और ये मैं क्रेडिट दूंगा पंजाब फूड अथॉरिटी को और इसको रोल मॉडल बनाते हैं कि हमारे सूबे। यही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं जो हम लोग बना रहे हैं और उनको अपडेट कर रहे हैं।
ठीक,
उसके बाद आ जाते हैं कि बाकी जो पानी है मिलावट शुदा और उससे कई बीमारियां आ रही हैं और वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो चाय के अंदर मिलावट आ रही है, जो मसाला जात के अंदर मिलावट आ रही थी, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है फूड अथॉरिटी की कि इन्होंने इसको पैकिंग में लाकर मिलावट का जो है वो अपना जो चांस है वो ही खत्म कर दिया। पहले ये होता था कि हमें,
लेकिन बेहद शुक्रिया डॉक्टर अनवर हम चाह रहे हैं कि हम ये बताएं कि क्या असरात क्या होते हैं। वो तो उन्होंने बता दिया कि वो ये कुछ इकदाम कर रहे हैं और ये इकदाम ज़ाहिर भी शुरू हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में तो अभी बहुत कुछ करना अभी बाकी है। तो पेशतर इसके कि हम इनके इन कारकर्दगी को हाईलाइट करें, हम लोगों को ये ज़रूर बताएं कि वो क्या करें और क्या ना करें कि उनकी जो सेहत है और उनकी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं अगर वो एहतियात ना करें और वो कुछ खाएं जो खाना चाहिए और वो कुछ ना खाएं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी हमारे साथ, अगर आप मुझे इजाजत दें जी बोलिए। मैं चाह रही थी कि आपने कुछ रोशनी तो डाल दी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार खान के फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद फरहान जहांगीर चुगताई भी मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लें और उनसे पूछते हैं कि हमारे जो खाने पीने की जो गलत आदात हैं उनका क्या रोल है गजाइत की कमी के फैक्टर को बढ़ाने में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद फरहान जहांगीर चुगताई साहब।
जी वालेकुम सलाम। यसमा तो बहुत शुक्रिया आपका और वैसे अमेरिका के, उन्होंने एक पंजाब की बहुत रिमोट एरिया रहीमिया खान से ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से हमें अपना डिस्कशन का हिस्सा बनाया। और मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जी हमारे जो रिस्पेक्टेबल पैनल है जो डिस्कशन कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छी आ रहा है, इसमें फूड अथॉरिटी का बहुत अच्छा रोल चल रहा है। और जो जहाँ तक सवाल है खाने पीने की आदात का हमारे गजाइत की कमी के ऊपर, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा जी हमारे आजकल जो है अर्बनाइजेशन की वजह से डाइट एक्सक्लूसिव डाइट्स की जो है वो एक रिवायत कायम होती जा रही है। हमारे यहाँ पर जो है अब लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक डाइट पोर्शन वो यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे। अब फॉर एग्जांपल किसी को अगर प्रोटीन रिच डाइट्स को ले रहे हैं तो बाकी जो प्रोटीन के जो हमारे डाइट के कंपोनेंट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो रूल आउट हो जाते हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल रही होती। इसी तरह से हमारे जो होल व्हीट फ्लोर का जो एक सीना पसीना और हमें रिवायती तौर पर भी एक खुराक मिलती आ रही थी, लेकिन अब लोग होल व्हीट फ्लोर से वाइट फ्लोर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जो अल्टीमेटली उनको बहुत सारी बीमारियों का वजह बन रही है। इसी तरह से हमारे जो फीमेल्स हैं, जो बच्चियां हैं, उनमें बहुत सारे जो हार्मोनल इश्यूज हैं वो डाइट के अंदर उनकी प्रॉपर गजाइत उनको ना मिलने की वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कुछ बहुत सारे लोगों की हाइट डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ ओवरवेट हो जाते हैं। अगर यही सिचुएशन जो है हम बड़ों में देखें तो लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, लोग हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं, अल्टीमेटली जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ जा रही है। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी वजह से जो है हमारे यहाँ पर डाइट के बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गजाइत जो है प्रॉपर नहीं मिल रही लोगों को। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे जो एक बड़ी ही रिवायती तौर पर है कोई खुशी हो तो वहाँ पर आप मिठाइयों से लोगों को जो है ना उनको खुश करेंगे, अब वो इतनी ज़्यादा कैलोरीज रिच होती है कि वो रूटीन के तौर पर अगर आप देखें तो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की प्रिवेल कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर लोग उसको बर्न आउट नहीं कर पाते ठीक से, जिसकी वजह से लोग ओबेसिटी ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं जो अल्टीमेटली बहुत सारी मजीद बीमारियों को जन्म देती है। तो इसके हिसाब से ज़रूरी ये है कि आप हम डाइट और हमारा जो पोर्शन साइज है हमारे प्लेट का उसमें हर तरह की फूड सब्जी हो, उसमें फ्रूट्स भी हो, उसमें कुछ वेजिटेबल का पोर्शन भी हो, उसमें पल्सेस का भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी हो, पानी की एक जो ज़रूरी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो उन्हें सर्व की जाए, तो उससे एक तो खाना हमारा हर तरह की खुराक जो है वो उसकी डाइट का हिस्सा बन जाएगी और डाइट एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। अब एक नया ट्रेंड ये आ रहा है कि कस्टमाइज डाइट्स का, तो कस्टमाइज डाइट्स हैं जो पेशेंट्स हैं उनकी ओवरऑल जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक लोग बना के देते हैं। लोग जो खुद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली होता ही है कि वो एक एक्सक्लूसिव डाइट की तरफ ऐसा ऐसा जाना शुरू कर देते हैं और कुछ अर्से बाद वही चीज़ें उनको उनकी खुराक
तो फिर क्या होना चाहिए? नहीं तो अब ये लोगों में सही खुराक खाने की अवेयरनेस को कैसे पैदा किया जाए, कौन पैदा करेगा लोगों को? अगर नहीं पता तो उन्हें कौन गाइड करेगा?
जी बिल्कुल, उसमें मैं इसमें आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान में खास तौर पर, वैसे तो पूरी दुनिया में ये एक्टिविटी सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड फूड डे के हिसाब से कल हुई, और पूरे पाकिस्तान में तमाम इदारों में जो कि दुनिया के हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर जहाँ जहाँ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन,
लेकिन क्या एक दिन काफ़ी है? क्या सिर्फ एक ही दिन काफ़ी है? क्या एक ही दिन हमें ये करना चाहिए? तो एक
जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एक दिन से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, लेकिन ये कतरा कतरे से समंदर बनता है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, उनसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू उन्हें प्रोशर्स दिए जाते हैं। बच्चों को जो बहुत बड़ी जो हमारे फ्लैग बेयरर और टॉर्च बेयरर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक इसको आगे लेके चल रहे हैं। पहले तो ये टॉपिक कंसिडर ही नहीं होता था फॉर डिस्कशन, अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक मेन स्ट्रीम के ऊपर आ गया जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग अब इसी तरफ वापस आ रहे हैं। इसी तरह से रीना खान ने, हमने कल एक प्रोग्राम किया था वर्ल्ड फूड डे की मुनासिबत से, एक सेमिनार था, वॉक थी, और हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको हमने नाम दिया है मनोसलवा का। मनोसलवा इल्हामी क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने उन्हें कॉन्सेप्ट ये दिया कि जो आपके होटल्स में और जो आपके घरों में जो लेफ्ट ओवर फूड है उसे ज़ाया मत कीजिए, उस खुराक को आप किसी ऐसे अनप्रिविलेज तक दे दें जिनके पास वो मैसर नहीं है। हमारा वो थोड़ा सा खाना किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, तो इसमें अगर हम हर कोई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसिडर करते हुए अपना अपना पार्ट प्ले करें, उसको एक ओनरशिप दे, तो यकीनन हम एक खुराक की कमी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पूरा कर सकते हैं।
बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद फरहान जहांगीर चुगताई, आप हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, तो एक ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते
हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आज की राउंड टेबल हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में गजाइत की किल्लत, पाकिस्तान में गजा की सेफ्टी और इसके असरात और उनसे निमटने के क्या तरीके हैं। इसके लिए हमने गजाइत के माहरीन का एक पैनल आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया हुआ है। गुफ्तगू को एक बार फिर आगे बढ़ाते हुए हम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जहूर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जो इस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इस्लामाबाद के साथ खुराक के तहफ़ से मुतालिक एक प्रोग्राम से भी वाबस्ता हैं। तो डॉक्टर ताहिर जहूर साहब, कुछ बताइए कि आलमी इदारा खुराक जो है पाकिस्तान में गजाइत की किल्लत को दूर करने के लिए क्या प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के साथ मिलकर चला रहा है या इनफरादी तौर पर चला रहा है, और अब तक जो कुछ वो कर चुका है उसके क्या असरात सामने आए हैं? जी डॉक्टर ताहिर जहूर साहब।
जी, इसमें अगर आप मुझे इस सवाल से पहले इजाजत दें तो थोड़ा सा फूड सेफ्टी के ऊपर मैं एक बात करनी चाहूंगा।
जी जी,
कि जो फूड अनसेफ्टी, आपको पता है शायद कि इसमें ना दो तरीके से जो है ना फूड अनसेफ होती है, एक तो है टॉक्सिसिटी प्रोडक्शन उसमें हो जाती है फूड में, दूसरा है फूड बॉर्न डिजीजेज पैदा होती हैं। एक है उनकी कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट्स जो है ना, अगर स्टैंडर्ड के या फूड ग्रेड ना डाले जाए तो उससे टॉक्सिसिटी बनती है, दैट कैन यू नो कॉज इवन कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसमें आप देख लें मिठाइयों की बात डॉक्टर फरहान ने की, तो उसमें जो है ना वो कैंसर कॉजिंग, वो फूड ग्रेड अगर नहीं है तो वो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि इस वक्त बहुत इंसिडेंट चल रहा है पाकिस्तान में ये भी रिलेटेड। फूड बॉर्न डिजीजेज, ये जब तक उनकी सफाई सुथराई और हाइजेनिक एंड सैनिटरी कंडीशंस ठीक नहीं होंगी उससे भी आएगा, बिकॉज ऑफ सेवरल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी रेफरेंस से मैंने एक हायर एजुकेशन कमीशन से हमने एक प्रोजेक्ट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी को, इनके ये मेरे टीम मेंबर हैं उसमें, और हमने ये पूरे पंजाब में जो है ना डिफरेंट सिटीज में सैंपल्स रेडी टू ईट कलेक्ट किए, लेकिन चूंकि ये काम इतना बड़ा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, एब्सोल्युटली जो पंजाब फूड अथॉरिटी अपना रोल बहुत आला तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये है कोलैबोरेटिव वर्क, इसमें अवाम को और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है ना यकजा होकर चलना पड़ेगा, और इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को मैं इसी आवाज के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मीडिया कंपेन हो सके इसमें करनी चाहिए। ऑलरेडी हमें नजर आता है जिस शहर में जाते हैं फूड सेफ्टी वालों का जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नजर आती हैं, लेकिन पिछले इतने सालों से अगर नहीं काम हुआ तो आज से 8-10 साल पहले अगर शुरू हुआ तो आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम।
डॉक्टर ताहिर साहब, ये
इज द बेस्ट
ڈاکٹر طاہر صاحب، ایسا کیوں نہیں ہے کہ پاکستان میں جو نصاب کی کتابیں ہیں ان میں کیوں نہیں یہ خاص طور پر یہ شامل کیا جاتا کہ بچوں کو شروع سے ہی معلوم ہو کہ انہیں کیا غذا کھانی ہے، کون سی غذا اچھی ہے، کون سی غذا اچھی نہیں ہے؟ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے نصابی کتابوں میں کچھ مخصوص جب سبجیکٹ ہیں ان میں تو وہ شامل کر دیتے ہیں، لیکن یہ لازمی ہونا چاہیے بچوں کو شروع سے ہی ان کو اپنی صحت کے بارے میں بتایا جانا چاہیے اور ان کو خوراک.
اگر میرے خیال سے اگر کیپٹن عثمان صاحب ابھی موجود ہیں لائن پہ تو وہ بھی آپ کو شاید بتائیں گے کہ کچھ جو ہے نا وہ پانچویں کلاس تک جو ہے نا وہ میں بھی ان کے پینل میں شامل ہوں ایز اے سینئر سائنٹیفک پینل ممبر اور ان کی اسٹیچری باڈی کا ممبر بھی ہوں ایز اے ڈائریکٹر جنرل آف دی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس. ایک بک ہم نے وہ تیار بھی کروائی تھی اس وقت پینل میں. تو میرے خیال سے اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع نہیں ہے، یہ شروع ہو چکی ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے،
لیکن ان پر تیزی سے عمل درآمد ضروری ہے. ڈاکٹر عثمان، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ نے اس کتاب کو کس حد تک انٹروڈیوس کرا دیا ہے اور کیا صرف پانچویں جماعت تک ہی ضروری ہے یا باقی ہر سطح پر اس کو انٹروڈیوس کرایا جانا چاہیے؟ بلکہ باقاعدہ سیمینارز ہونے چاہیے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. آپ اس سلسلے میں کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کچھ کر چکے ہیں؟
جی میں بتاتا ہوں. جی آپ کو فضل صاحب نے بتایا بھی ہے. ایکچولی جی یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سائنٹیفک پینل کی محنت کی وجہ سے ممکن ہوا کہ پنجاب حکومت کو اپنے کریکولم کے اندر چوتھی پانچویں جماعت کے اندر نیوٹریشن اور فوڈ سیفٹی پہ چیپٹرز ایڈ کرنے پڑے. یہ بنیادی طور پر اس بات کی ریئلائزیشن تھی پنجاب میں کہ ہم نے فوڈ سیفٹی اور فوڈ نیوٹریشن کا سبق اپنے بچوں کو پڑھانا ہے کیونکہ بچے ہمارے ٹارچ بیئرز ہیں.
ٹھیک ہے،
ہمارے پیغام کو.
تو آپ نے کتنے اسکولوں میں یہ جو چیپٹرز ہیں شروع ہو چکے ہیں؟
جی میں آپ کو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک دو منٹ کے اندر تمام جو میئر جو آپ بیسکلی آپ نے سوال کیے پچھلے دو تین منٹ سے آپ کر رہی ہیں کہ اویئرنیس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کو کیسے بتایا جا رہا ہے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. میں اس کے حوالے سے چاہتا ہوں آپ کو میں دو تین باتیں بتا دوں. ایک تو جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان کے اندر بالعموم اور پنجاب کے اندر بالخصوص ہمارے تمام یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں گے نیوٹریشن کو ایک امپورٹنٹ، نیوٹریشن کی فیکلٹی کو ایک امپورٹنٹ مقام حاصل ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیے، آپ کسی بھی کالج میں چلے جائیے، آپ کو 450 بچہ وہاں پہ نیوٹریشن میں گریجویشن کرتا ہوا، ماسٹرز کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ آج اس کو امپورٹنٹ سوسائٹی میں مل چکی ہے. جب آج سے 20 پہلے ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں نیوٹریشن کے بارے میں اے بی سی بھی پتہ نہیں ہوتی تھی. آج آپ جائیں تو ایک اوور آل اویئرنیس سوسائٹی میں آئی ہے جس کا کریڈٹ ہمارے میڈیا کو جاتا ہے، جس کا کریڈٹ ہماری تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو جاتا ہے جنہوں نے اس ٹاپک کو ہمارے لیے امپورٹنٹ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پنجاب کے اندر تمام یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہوا ہے. ہم ہر مہینے کسی نہ کسی یونیورسٹی میں جا کر پروگرام کرتے ہیں، اس پروگرام کی وساطت سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کیا کام کر رہی ہے اور لوگوں کو اپنا امبیسڈر بناتے ہیں. ہم نے اسکول ایجوکیشن کے ساتھ مل کے ایک ابھی جو اپنا نیا پروگرام بنایا ہے وہ یہ ہے جس میں ہم اسکول کے بچوں کو اپنے امبیسڈرز بنائیں گے اور ان بچوں کو ہم فوڈ امبیسڈرز کا نام دیں گے جو اپنے گلی محلوں میں جا کے نشاندہی کریں گے کہ کہاں پر پاپڑ بناتے وقت رنگ کا استعمال ہو رہا ہے یا کیمیکل گریڈ کلر کا استعمال ہو رہا ہے، کہاں پہ لوگ گدا آئل یوز کر رہے ہیں یا کہاں پہ اینیمل فیٹ سے چربی کو پگھلا کر تیل بنایا جا رہا ہے یا کہاں پر جو ہے وہ اوور یوز کوکنگ آئل جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے.
تو بچے کس طرح شامل، بچے نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے یا اسٹوڈینٹس کیسے اس کا پتہ لگائیں گے.
آج پنجاب فوڈ اتھارٹی پورے پنجاب میں پھیل چکی ہے، ہمارا آپریٹر ہر جگہ پر موجود ہے، ہمیں وسل بلورز کی تلاش ہے. جو دیکھیں جب کسی کو میں بتاتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو پکڑ رہا ہوں تو لوگ مجھے انفارمیشن دیتے ہیں آٹومیٹکلی. آج سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ان چیزوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے اور الحمدللہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے معاشرے میں وہ کانفیڈنس لوگوں کو دیا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی ایڈلٹریشن کی شکایت کرتے ہیں تو وہ ان نوٹس نہیں جاتی اور
تو اس کی سزا کیا ہے
اور کریکٹو ویئرز لیے جاتے ہیں.
تو عثمان یونس صاحب، کیا سزا، کیا قانون میں کیا سزائیں ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ ملاوٹ کرتے ہیں اور غیر معیاری چیزیں بیچتے ہیں، اور وہ کس کو ملتی ہے؟ کیا خوراک بیچنے والے کو ملتی ہے، خوراک پیدا بنانے والے کو ملتی ہے یا خوراک کی سپلائی کرنے والوں کو ملتی ہے؟ کس کو سزا ملتی ہے؟ اور
جی میں ایک بات ہمارے قانون میں، یہ جو قانون بنا، اس قانون کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ان سیف فوڈ کا کاروبار کرنے والا شخص کسی بھی سٹیج پہ ہو،
हाँ वो उगाने की स्टेज पे हो, अगर वो खेत में सब्जी गंदे पानी से उगा रहा है तो वो कसूरवार है, हाँ वो ट्रांसपोर्टेशन की स्टेज पे हो तो वो कसूरवार है, हाँ वो स्टोरेज की स्टेज पे हो तो वो कसूरवार है, हाँ वो प्रोसेसिंग की स्टेज पे हो तो वो कसूरवार है, हाँ वो बेचने की,
लेकिन उसको पकड़ने की, उसको पकड़ने के लिए क्या इकदाम आप कर सकते हैं, और अब तक आप कितने लोगों को पकड़ चुके हैं और सजा भी दिलवा चुके हैं अभी तक? जी जी,
पहली बात तो ये है कि हमारे तमाम जो फूड्स हैं उनके हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, हमारे पास ऐसी ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि हम उनकी प्रोडक्ट को अपने लैब्स में लाके टेस्ट करते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट अगर वो उन टेस्ट को क्वालिफाई ना करें तो उनको प्रोसीड किया जाता है उनके खिलाफ, और छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको 5 साल तक की सजा हो सकती है, और जो बड़े बिजनेसेस हैं जो बड़ी मिलावट में मुलव्वस है जिनका नुकसान ज्यादा लोगों को हो सकता है उनको 10 साल तक की सजा हो सकती है।
तो अब तक क्या क्या
पिछले पूरे एक साल के अंदर, जी मुझे अगर आप कह
दीजिए, जी इरशाद,
देखिए जी हमारे पास मल्टी टीयर्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों को करेक्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो हम उसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट नोटिस, यानी कि जब हम आपके पास जाते हैं और हम देखते हैं कि आप कोई फूड बिजनेस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले आपको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं, वो बुनियादी तौर पर उन पॉइंट्स को कवर करता है जिसमें आपकी पर्सनल हाइजीन, किस माहौल के अंदर आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, खाना
नहीं, ये तो हो गया ना, ये तो सारे बिल्कुल आपका प्रोडक्शन नहीं। डॉक्टर
साहब, अगर आप मुझे 1-2 मिनट के लिए ये बात बताने में दें तो आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ।
जी,
मल्टी लेयर्ड अप्रोच है हमारी, सबसे पहले हम इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं, उसके बाद अगर कोई करेक्टिव मेजर ना ले तो फिर हम उसको फाइन करते हैं, अगर वो भी करेक्टिव मेजर ना ले तो फिर हम उसको सील करते हैं, और अगर फिर भी वो दुरुस्त ना हो तो फिर हम उसको FIR करके बंद करते हैं। साइमल्टेनियसली भी कुछ एक्शन हो रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी शख्स को हमने पहली दफा ही पकड़ा और उसको FIR कर दी क्योंकि वो पहली दफा ही ऐसे ऑफेंस में मुलव्वस था जो इंसानी जान के लिए नुकसानदेह था, यानी कि वो ऐसी मिलावट कर रहा था जिससे किसी की जान जा सकती।
तो इसके अदाद शुमार कोई आप बताएंगे? मेरा कहने का मतलब ये
जी मैं आ रहा था जी अदाद शुमार ऐसे हैं जी कि हमने इस पूरे पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 650 मिलियन रुपीज का फाइन किया है मुख्तलिफ फूड बिजनेसेस को मुख्तलिफ किस्म की वायलेशन के अंदर। अगर आप अरेस्ट के बारे में बात कर रही हैं तो ओवर 700 लोगों को मुख्तलिफ किस्म की एडल्ट्रेशन के अंदर अरेस्ट किया गया है। अगर आप FIR की बात करेंगी तो FIR की तादाद जो है वो हजारों में है जिन लोगों को हमने मुख्तलिफ किस्म की वायलेशन में FIR करके जो है उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में चला रहे हैं। तो और अगर आप सीलिंग की बात करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ प्रेमिसेस हैव बीन सील्ड, thousands of premises have been put under emergency prohibition order, corrective measures liye jaate hain, agar koi khule mein khana bana raha hai aur wahan pe makhi aa rahi hai ya machhar aa raha hai to usko tab tak ke liye band kiya jata hai jab tak wo wahan jali na laga le ya usko cover na kar le, agar kisi ne washroom jo hai apne production area mein rakha hua hai to usko band kiya jata hai temporarily taki wo apna washroom jo hai wo production area se shift kare, agar kisi ne storage zameen pe rakhi hui hai to uski storage ko zameen ki nami se door karne ke liye usko हवादार जगह पर स्टोरेज करने के लिए बताया जाता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जिसके तहत हम
आप आगे चल रहे हैं,
इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ग्रेजुअली उनको आगे लेके चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं है हमारा कि हम फूड बिजनेसेस को बंद कर दें, हमारी जो एफर्ट है वो ये है कि हम सेफ्टी पैराडाइम के अंदर रहते हुए उनको इम्प्रूव करें, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाएं, और अगर आज वो थोड़े बेहतर हुए हैं तो कल वो ज्यादा बेहतर हो जाए। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, आज पंजाब के अंदर तमाम फूड बिजनेसेस जो है वो बेसिक पैथोलॉजी के टेस्ट के बाद अपने लोगों को अपने पास इंप्लॉय कर सकते हैं। आज ये मुमकिन नहीं है कि किसी शख्स को टाइफाइड हो या वो किसी ऐसी बीमारी में मुलव्वस हो जो कि वो किसी दूसरे शख्स को फैला सकता है खाना पकाने के थ्रू, वो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो फूड बिजनेस में काम करे क्योंकि हमने उनकी जो पैथोलॉजी के टेस्ट है वो कंपल्सरी किए हुए हैं। इसके साथ साथ फूड बिजनेस की Level 1 की ट्रेनिंग भी कंपलसरी है पंजाब में, और हम तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों को Level 1 और 15,000 से ज्यादा लोगों को Level 2 की ट्रेनिंग करा चुके हैं पिछले एक साल में, और इस वक्त पूरे पंजाब में तकरीबन 17,000 से ज्यादा लोग जो है वो फूड बिजनेस में Level 1 और Level 2 की ट्रेनिंग करके काम कर रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको पता है कि फूड बिजनेसेस रोजाना इंक्रीज होते हैं, हम रोजाना ये ट्रेनिंग का अमल जो है इसको जारी रखे हुए हैं। साथ साथ जो हमारी मेडिकल स्क्रीनिंग है वो भी कंपलसरी है पंजाब के अंदर, वो भी हम साथ साथ करते हैं। जी
एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, वो आपकी इन बातों पर कोई कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी कौन सा हमारे साथ है?
जी मोहसिन अली मौजूद हूँ।
जी मोहसिन अली कहाँ से, जल्दी से सवाल कीजिए।
डी जी खान
जी बोलिए।
हाँ मेरा इस मोहतरम से आपका बहुत शुक्रिया आपने कॉल हमारे लिए। मेरा ये क्वेश्चन है मोहतरम से, जो वो कह रहे हैं कोई भी हाल नहीं है, फूड वाले आते हैं बस لوگوں سے رشوت لیتے ہیں, کوئی ہتھیار نہیں ہے ان کا, جو ان کو پیسے دے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی جو ہے نا کاروائی بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ویسے بھی جو شاپس ہیں ان کے خلاف آتے ہیں, جو مینوفیکچرنگ فیکٹریز ہیں جو بناتی ہیں ان کے خلاف تو کوئی بھی ایکشن نہیں ہوتا. جو بیس ہے جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے, جو دو نمبر اشیاء بنا رہے ہیں غلط ان ملاوٹ شدہ, تو پھر جو ہے نا جب ان کی وہ نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی, ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی, پھر تو وہ بکیں گی. ایسا کوئی حال نہیں ہے پاکستان میں, ساری کرپشن ہی کرپشن ہے.
عثمان یونس صاحب آپ نے بہت وضاحت کی, یہ ڈی جی خان سے, ڈی جی خان سے انہوں نے بات کی,
باقی کوئی قانون بھی نہیں ہے.
ڈی جی خان کی بات کر رہے ہیں,
کہاں سے کال کر رہے
ہیں؟ ڈی جی خان سے.
ہیلو
جی, ڈیرہ غازی خان سے.
جی میں چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی اپنے اسی پروگرام میں ہمیں بتائیے اس شخص کا نام جس نے رشوت مانگی ہے. میں آپ کو آج اگلے 10 منٹ کے اندر انکوائری کر کے اس کے خلاف ایکشن لے کے دکھاؤں گا. الحمدللہ آج اگر پنجاب فوڈ اتھارٹی پہ کوئی الزام نہیں لگتا تو وہ کرپشن کا الزام ہے جو ہمارے اوپر نہیں لگتا.
تو ہم
تمام
ہم اپنے پروڈیوسر سے گزارش کریں گے کہ ان کا
نام بتائیے. ہم آپ کو انسپیکشن اس کے خلاف جو ہم نے انسپیکشن کی ہے یا کب ہم نے کب اس کی انسپیکشن کی ہے وہ بھی اس کی ڈیٹیل.
تو بہت اچھی ہے, آپ نے بڑا اچھا یہ ایک آفر کی ہے. ہم اپنے پروڈیوسر سے کہیں گے ان کا, آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیجیے. ایک اور کالر ہے وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم پہلے بتا دیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سیف رحمان بھی موجود ہیں, اور ڈاکٹر سیف رحمان سے بھی ذرا تھوڑا سا اور انتظار کر لیجیے. ایک کالر کو ہم لے لیتے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی کہاں سے بول رہے ہیں جلدی سے؟
بات یہ ہے کہ میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں.
جی
بڑی اچھی سی باتیں ہو رہی ہیں, باتیں سن کر پتا چلتا ہے کوئی بیماری نہیں رہے گی, کوئی بے منی نہیں ہوگی. لیکن جتنے مسالوں کی دکانیں کھلی مسالہ جات کی, یہ جا کے چیک کریں, ہر مسالہ 2 نمبر مل رہا ہے, آپ کی 2 نمبر مل رہی ہے.
جی ڈاکٹر عثمان یونس صاحب, یہ راول پنڈی سے ان کی شکایت ہے, آپ نوٹ کر لیجئے اس کو بھی.
اور مجھے سمجھ میں آئی کس چیز کی بات کر رہے ہیں.
انہوں نے بھی مسالوں کی بات کی ہے کہ مسالے 2 نمبر آ رہے ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں ان میں ملاوٹ ہے. تو یہ آپ نے,
جی میں بتاتا ہوں, جی ہم سال میں 2 دفعہ مسالوں کی جو سیمپلنگ ہے وہ کرتے ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جائیے, وہاں پہ جو مسالے جن کے برانڈ ہم نے فیل کیے ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں, اور جن کے برانڈ ہم نے چیک کر کے جو ہمارے.
اچھا یہ ڈاکٹر صاحب, یہ عثمان صاحب, یہ تو ہاں تو برانڈ کی بات تو بعد میں, یہ تو عام لوگ جو دکانوں پر عام لوگ خرید رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چیزیں میسر نہیں ہیں.
مسالوں کی بات کروں, آج پنجاب میں ان برانڈیڈ چیز نہیں بک رہی, ہم نے مسالے چونکہ پیکج کر دیے ہیں, پیک کر دیے ہیں, اس لیے ہر برانڈ کا نام اس مسالے پر موجود ہے. آپ برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ پہ جائیے.
ویب سائٹ پر کیا جائیں, وہ تو یہ صاحب تو خود وہیں موجود ہیں راول پنڈی میں, وہ اپنے ان دکانوں کا بتا رہے ہیں جہاں سے وہ اشیاء خرید رہے ہیں, تو انہوں نے اس کی بات کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس پر کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ آپ کا بھی مزید کام کرنا باقی ہے, آپ کو اور بھی بہت سارا کام کرنا ہے تاکہ ہر دکان سے غیر معیاری چیز ہٹ جائے, تاکہ لوگ غیر معیاری چیزیں خرید کر بیمار نہ ہوں. میں ڈاکٹر سیف رحمان کو ضرور اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ڈاکٹر سیف رحمان صاحب. جی خوراک کی بات ہو تو خوراک موجود ہے پاکستان میں, لیکن وہ ضائع کرنے میں پاکستان جو ہے خوراک خاص طور پر پھلوں کو ضائع کرنے میں نمبر 1 پر ہے, جبکہ پھل معیاری پھل پیدا کرنے میں آپ نے پروگرام سے پہلے بتایا تھا کہ نمبر 5 نمبر ہے شاید. تو یہ بتائیے کہ یہ جو پھل ضائع ہو رہے ہیں پاکستان میں, ان کو کیسے ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے, اور یہ جو پھل ہیں جب یہ ضائع ہو جائیں تو ان سے ماحول پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جلدی سے, اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے عثمان یونس صاحب سے کہ کیا وہ پھلوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. جی
جی بہت شکریہ. پھلوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلے تو جو ہماری چین ہے کولڈ اسٹوریج کی, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں.
نہیں لیکن وہ پھل تو
ماحول سے
نہیں, پہلا سوال یہ کہ وہ پھل جو مارکیٹ تک ہی نہیں پہنچ پاتا, وہ پھل وہیں گر کے تباہ ہو جاتا ہے, اور کیونکہ وہ کہیں جا نہیں سکتا, وہاں ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہے, تو اس کو ضائع ہونے سے پہلے تو بچایا جائے نا. وہ کیسے بچائیں گے اور کون بچائے گا اس کو؟
اس کے لیے تو جو ہمارے ایگریکلچر فارمرز ہیں, ہمیں ان کو جو ہے وہ ٹرین کرنا ہے تاکہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں کیا وہ ان سے واقف ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے زیادہ تر فارمرز ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کی اویئرنیس اور ان کی ایجوکیشن کے لیے ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ کافی اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں کہ انہیں ٹائم ٹو ٹائم یہ بتا سکیں کہ किन टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है वो ये सारा काम वो कर सकते हैं।
ठीक, लेकिन जाहिर
आपने बात की थी कि जो फल जाया हो जाते हैं और उनके माहौल के क्या असरात होते हैं, तो अगर आप हमारी जो सब्जी मार्केट्स हैं उनका जायजा लें तो जो गले सड़े फल और सब्जियां होती हैं वो आप देखें कि वो कहीं फेंक दी जाती हैं, और उन्हीं मार्केट्स के अंदर जो है वो सीवेज का पानी, गंदा पानी भी मिक्स हो रहा होता है, तो वहां पे एक नई किस्म की माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जो है वो पैदा हो रही है। अब आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है उसके अंदर पैथोजन है, और जो आपका फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट है उसके अंदर फूड बॉर्न डिजीजेज के पैथोजन भी मौजूद हैं। तो ये मुमकिन है कि वहां पे एक नई किस्म के पैथोजन या नई किस्म की जो डिजीजेज हैं वो पैदा हो सकती है।
ठीक,
अगर आपको याद हो तो पिछले साल शखर के इलाका में एक नई किस्म का टाइफाइड आया है जो कि इंतहाई ड्रग रेजिस्टेंट है, तो वो भी किसी ऐसे ही एक्शन की बदौलत जो है वो प्रोड्यूस हुआ है जिसको आज तक हम सॉल्व नहीं कर पाए।
ठीक है,
दूसरा
तो
इसका हल ये है कि हम
दूसरा हल
ये है कि हम उस उन जो फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट है उसको क्विकली जो है वो रिमूव कर दें, और जो हमारे फार्मर्स हैं वो एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू उससे ना सिर्फ बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं बल्कि वो बहुत अच्छी एक बायो फर्टिलाइजर है, और वो बायो फर्टिलाइजर जो है दैट कैन बी अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिससे जो हम अपना माहौल है उसको बचा सकते हैं, और जो एक नया कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फूड का उसको हम इंश्योर कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक है, तो ये बात हुई कि एक तो फलों को जाया होने से बचाने की जरूरत है, और उस्मान यूनुस साहब आपका इसमें कोई रोल है फूड अथॉरिटी का कि वो फलों को पहुंचा दे, महकमा ज़रात तो पता नहीं करेगा या नहीं करेगा या कर रहा है या नहीं कर रहा।
बुनियादी जी, पंजाब फूड अथॉरिटी जब हम किसी भी कोल्ड स्टोर में विजिट करते हैं तो हम वहाँ पे लोगों को जरूर एजुकेट करते हैं कि उन्होंने फलों को किस तरह से स्टोर करना है और वो क्या ऐसी गुड प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करके वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनका जो फल है वो खराब ना हो, या वो खराब अगर हो गया है तो वो दूसरे फल को भी खराब ना करे। तो सेग्रीगेशन के लिए, कोल्ड स्टोर के अंदर चीजों को स्टैक करने के लिए, किस टेम्परेचर पे चीजों को स्टोर करना है, ये हम यूजुअली लोगों को एजुकेट करते हैं, ना सिर्फ थ्रू विजिट्स बल्कि हमने इसके हवाले से उनको मुख्तलिफ सेमिनार्स करा के भी मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर एजुकेशन कराई है। मंडी के लोगों को भी हम बुलाते हैं, कोल्ड स्टोर के लोगों को भी बुलाते हैं, जो परचून के काम में लोग मुलविस हैं उनको भी बुलाते हैं, और उनके बिजनेसेस को सेफ रखने के लिए उनको मुख्तलिफ किस्म की हिदायत जो है वो हमने प्रिंट की शक्ल में भी उनको मुहैया की हुई है। हमारी SOPs जो है वो डाउनलोड करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपना अपने दुकानों पर और अपनी मुख्तलिफ स्टोरेज फैसिलिटीज के ऊपर, और हम उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करके उन चीजों को फिर
कर भी सकते हैं। तो उस्मान यूनुस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिए आज, तो आपने आप पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि डॉक्टर ताहिर जहूर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त उस्मान यूनुस साहब से।
बिल्कुल जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। रियली मैं तो समझता हूँ कि ये सेशन जो है ना वो आपको कंटिन्यू करने चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वक्तन फवक्तन सामने आती रहती हैं। मैं अपने पिछले सवाल की तरफ वापस आऊंगा, रोल ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन पाकिस्तान।
जी जी,
तो उस सिलसिले में मैं ये थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चूंकि पूरी दुनिया में उनके डिफरेंट कंट्रीज में उनके रोल्स हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान के इश्यूज के मुताबिक उनके रोल्स हैं, जिसमें विद इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद जेनरस इंटरनेशनल डोनर्स दे ऑलवेज सपोर्ट कि वो जो है ना वो लोकली स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड को जो है ना वो डेवलप करते हैं और उसको न्यूट्रिशनल डाइट को इम्प्रूव करके लोगों को मुहैया करते हैं, और उसमें ज्यादातर ये फिर इनके एक्शंस होते हैं, दे इंटरवीन करते हैं टू ट्रीट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जैसे कि सिंध और बलोचिस्तान के एरियाज जो है ना मॉडल स्टडीज हैं इनके, ये प्रिवेंट कर रहे हैं स्टंटिंग में स्टडी कर रहे हैं अंडर 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन, और उसके अलावा नेशनल और प्रोविंशियल फोर्टिफिकेशन अलायंस के साथ जो है ना ये राइस और चक्की बीट फ्लोर फोर्टिफिकेशन के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। बीट फ्लोर फोर्टिफिकेशन एक ऐसा है जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये फूड स्टेबिलिटी जो है ना उसमें बीट की जो है ना ये एक स्टेपल फूड है, और ये 70% लोग जो है ना वो 60-70% देहातों के लोग जो है ना वो चक्कियों का आटा खाते हैं, मिलों का आटा भी अलग से है, लेकिन 100% ये स्टेपल फूड हर बंदा एक चपाती रोटी तो जरूर खाता है। तो उसको जो है ना वो न्यूट्रिशन जो हिडन हंगर है उसमें आयरन की फोर्टिफिकेशन, जिंक, विटामिन B12 इसकी फोर्टिफिकेशन पे आजकल मॉडल स्टडी हो रही है जो कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और अल्लाह करे कि ये इसमें मुकम्मल कामयाब हो जाए हम मॉडल बनाने में, तो ये इसकी जो है ना वो एनीमिया की जो 60% औरतें और बच्चे और यंग एडल्ट गर्ल्स जो है ना ये इनमें एनीमिया की ज्यादा प्रॉब्लम है। ये जिस तरह से एक साल्ट आयोडाइज का मॉडल था इसी तरह से जो है ना ये इसका वीट फोर्टिफिकेशन का मॉडल कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। हम बड़ा पुर उम्मीद हैं इस चीज में, जिस लगन से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे मिलके उनके साथ, वी एक्सपेक्ट के जो है ना इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान को जो है ना ये बड़ा बेनिफिट देगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन और गजाइत के हवाले।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर तैयजुर साहब। डॉक्टर हमारे पास अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और हम चाहेंगे कि बाकी लोगों से भी एक एक सवाल जरूर कर लें। डॉक्टर फरहान जहांगीर चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि वो मसला मैं जरूर चाहूंगी कि आप उसको हाईलाइट कीजिए कि जब जो खुराक है या जो फसल पैदा हो गई एक जगह या फल पैदा हो गए उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो उसी हालत में ताज़ा फ्रेश हालत में पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए और क्या ये जो ऑनलाइन अब मार्केट्स वजूद में आ रही हैं उनका कोई रोल हो सकता है और क्या ऐसी ऑनलाइन मार्केट्स को प्रमोट करने में यूनिवर्सिटियां कोई किरदार अदा कर सकती हैं जो
बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपके सिलसिले में। उसमें ये है कि हमारे यहाँ पे अभी तक कोल्ड चेन और सप्लाई चेन का जो है बहुत बड़ा एक इशू है, ये तो काफी ज्यादा कॉस्ट इस पे आती है जिसकी जो इतनी इजीली हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते अमाउंट। तो उसमें ये है कि कोल्ड चेन कुछ छोटे लेवल पे अगर हम इंट्रोड्यूस करवाया जाए उसमें कुछ इंजीनियरिंग स्पेक्ट्स ना से आ जाए, कुछ स्मॉल स्केल लेवल पे हम जो फार्म फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको हम लोकल मार्केट्स बनाए जाए, उनको ज्यादा दिन के बड़ी मार्केट में लेके आए, उनकी छोटी छोटी मार्केट मुख्तलिफ जगह बना दिए ताकि हर एक को एक्सेस उसके फ्रेश फ्रूट की एट द डोर स्टेप रादर देन कि हम उन्हें बहुत दूर दूर तक भेजें, क्योंकि उसमें कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन आ जाती है, उसकी यहाँ पे स्टोरेज शेल्फ स्टोरेज है उसकी इफेक्ट हो जाती है। यूनिवर्सिटी इस तरह से कर सकती है कि यूनिवर्सिटीज अपने जहाँ पर जो एग्रीकल्चर हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, उसमें न्यू न्यू वराइटीज इंट्रोड्यूस करवा के उनकी न्यू न्यू प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवा के, जैसे हम अगर वैल्यूडेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास मल्टीपल वेज हैं कि हम हमारी फ्रेश प्रोड्यूसर्स को अच्छे वे से वैल्यूएटेड प्रोडक्ट करके अच्छा रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं और उन्हें मार्केटेबिलिटी और शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं।
जी तो डॉक्टर अनवार मलिक साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो गजाइयत की कमी का मसला है इसके लिए आप क्या तजावीज देंगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं?
मैं डॉक्टर फरहान और डॉक्टर सैफ की बात को थोड़ा सा बनाऊंगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर जितना फ्रूट जाया हो रहा है उसकी आप अगर मकदार पूछें तो 2.2 टन वेजिटेबल्स और 3 मिलियन टन जो है वो फ्रूट हमारा वेस्ट हो रहा है और ये ऑलमोस्ट कोई 30% ऑफ द टोटल ऑफ पाकिस्तान
जी
वैल्यू एडिशन।
तो इसके लिए क्या आपके तजवीज क्या देंगे
प्रोडक्ट बना के?
जी जी तजवीज दीजिए।
सॉरी
तजवीज क्या देंगे आप इनको बचाने के लिए?
जी उसके लिए ये है कि मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी अभी बताता हूँ।
एक मिनट है आपके पास
बल्तिस्तान में जाके यहाँ पे जाया हो रहा था फ्रूट, मैंने उनको जाके तरबियत दी है कि इसके जैम यानी इसकी अच्छी पैकिंग इसकी हाइजेनिक जो है ये प्रोसेसिंग ये हो सकती है और प्राइस भी ज्यादा मिल सकती है, बीच में जो ट्रेडर है ये ज्यादा पैसे जमाते हैं उसको भी जो है साइड पे किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा सा एम्पावर करे इसको और इसकी वैल्यू एडिशन फर्दर और की जाए आर एंड डी एक्टिविटीज बढ़ाई जाए तो हम ये मैल न्यूट्रिशन भी दूर कर सकते हैं और अपने फार्मर की जो है वो जो है उसकी उसको भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मकदार है 30% फ्रूट का जाया होना
और वही फ्रूट और वही फ्रूट अगर ताज़ा हालत में जी और एक तो जाया ना और दूसरे ताज़ा हालत में जब लोगों को पहुंचे तो उनकी जो गजाइयत की कमी का मसला है उसमें बड़ी सप्लीमेंट मिल जाएगा अगर उनको सस्ता फल मिल जाएगा और वो ताज़ा भी होगा और गजाइयत से भरपूर भी होगा तो एक गजाइयत की कमी के मसले की एक सूरत निकल सकेगी। तो उस्मान यूनुस साहब समाप्त कीजिए कि आइंदा हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है इस मसले को निमटने के लिए, आपके पास सिर्फ एक मिनट है।
जी मैं बात तो बताऊं जी आपको कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बिलुमूम और पंजाब के अंदर बिलखसूस लोगों की अवेयरनेस की वजह से और मीडिया के तआवुन की वजह से और इवन जुडिशरी के तआवुन की वजह से فوڈ سیفٹی اب ایک اہم سبجیکٹ ہے اور ہم
بے حد شکریہ
جو ہے وہ
بے حد شکریہ
اب اس بات کی ریلائزیشن جو ہے وہ کر چکے ہیں.
جی
ہم نے
بہت شکریہ پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا. بہت شکریہ ہمارے آج کی ہم نے بات کی پاکستان میں خوراک کی سیفٹی اور غذائیت کی قلت کی صورتحال اور اسے نمٹنے کے طریقوں پر. ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے ڈاکٹر طاہر ظہور, ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر محمد فرحان جہانگیر چغتائی, ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر انوار ملک, ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر ایم سیف رحمان, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیس قریشی موجود نہیں تھے, ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیر گل. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ میں گزشتہ سوموار کو یوم کولمبس منایا گیا. یہ دن ہر سال اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس کی امریکہ دریافت کرنے کی یاد میں منایا جاتا ہے. امریکیوں کی ایک بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ کولمبس ڈے کے سالانہ تعطیل یہاں بسنے والے 17 ملین اطالوی امریکیوں کی ثقافت اور ان کی خدمات کا اعتراف ہے. لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک کرسٹوفر کولمبس کوئی پہلا شخص نہیں تھا کہ جس نے امریکہ دریافت کیا, بلکہ اس سے بھی پہلے یہاں کے مقامی یہاں رہ رہے تھے. تاریخ کو درست کرنے اور امریکہ کے مقامی باشندوں کے احترام میں ملک بھر میں کولمبس ڈے کو تبدیل کرنے کی مہم میں تیزی آ رہی ہے. نیو یارک میں گزشتہ دنوں مینہٹن کے 5th Avenue پر دنیا کے سب سے بڑے 75th سالانہ کولمبس ڈے پریڈ کا اہتمام کیا گیا. کولمبس ڈے سٹیزن فاؤنڈیشن کے پریڈ چیئرمین ایلے دو ویلی کہتے ہیں,
کولمبس ول آلویز بی کولمبس ڈے اینڈ any of those people in those days you have to remember the good that they did.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کولمبس ہمیشہ کولمبس ڈے رہے گا, تمام دیگر تضادات کو بھول جائیں اور آج کے دن اس عظیم ہستی نے جو کارنامہ انجام دیا ہمیں اسے یاد رکھنا ہے. نیو میکسیکو کی کانگریس ویمن دیپ ہالینڈ کہتی ہیں,
The Europeans essentially tried to eradicate us. They brought disease.
وہ کہہ رہی ہیں کہ یورپی بنیادی طور پر ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ بیماریاں لائے. جب بعد میں امریکی حکومت فعال قوت بن گئی تو انہوں نے ہماری ریزرویشن پر پابندی عائد کر دی. امریکی کانگریس میں منتخب ہونے والی پہلی دو خواتین میں سے ایک اور لاگونا پیبلو کی ایک رکن دیپ ہالینڈ نے حال ہی میں اکتوبر کے دوسرے سوموار کو انڈیجنس پیپلز ڈے یا مقامی لوگوں کا دن بنانے کے لیے قرارداد کو اسپانسر کیا ہے. کانگریس ویمن دیپ ہالینڈ کہتی ہیں,
There's 573 distinct tribes right now in our country and we're all diverse and I think that
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں 573 مختلف قبائل ہیں, ہم سب مختلف رنگ ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے درمیان اس تنوع کو منانے اور مقامی لوگوں کی توثیق کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ یہ جگہ ان مقامی لوگوں کے لیے بھی ہے. ہالینڈ اور دیگر امریکی اب اس بارے میں بولنے لگے ہیں. اسے وہ کولمبس ڈے کا غلط استعمال قرار دیتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کبھی ایسی جگہ نہیں رہا کہ جسے پہلی بار تلاش کیا جاتا. ان کے اس دعوے کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ دہائیوں پرانے نصابی کتب میں موجود امریکی تاریخ اور ان لوگوں کا جو کولمبس ڈے کا دفاع کرتے ہیں براہ راست نفی ہوتی ہے. سابق گورنر ریجس پیکس کہتے ہیں,
In their minds, in accepting the truth is somehow shifting the power that it contributes.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے طاقت کا توازن بدل رہا ہے جو اکثریت کے حق میں ہے. اس میں میں یہ شامل کروں گا کہ اقلیت پر اکثریت کا اثر کم ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اور طرز عمل کافی گہرا ہے جس کی بنیاد خوف ہے کہ ان کا دیرینہ بیانیہ مسترد ہو رہا ہے. ریاستی تاریخ میں پہلی بار 2019 میں نیو میکسیکو نے سرکاری سطح پر کولمبس ڈے کو انڈیجنس پیپلز ڈے یا مقامی لوگوں کے دن سے تبدیل کر دیا, اور اب اس فیصلے میں دیگر بھی شامل ہو رہے ہیں. اب تک 130 شہروں نے قانونی طور پر کولمبس ڈے کا نام بدل دیا ہے. ریاستی دارالحکومت سانتا فے میں منعقدہ تقریبات کے شرکا کہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھنے کی نشانی ہے. تقریب کے ایک شریک جارج تویا کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سچ سچ ہے, انڈیجنس پیپلز ڈے درست سمت میں ایک قدم ہے. اس دوران نیو یارک کے کولمبس ڈے پریڈ میں کہا گیا کہ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. نیو یارک کی ایک رہائشی ہیدر فوزری کہتی ہیں,
Those who want to honor Columbus, then they keep that day. But those who want to honor the ones who lived before us, like the indigenous people of America,
وہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ کولمبس ڈے منانا چاہتے ہیں وہ کولمبس ڈے منائیں, لیکن جو لوگ ان لوگوں کا دن منانا چاہتے ہیں جو مقامی امریکی ہیں اور ہم سے بھی پہلے یہاں رہ رہے تھے, انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے. اسفر امام, اردو VOA, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urdu.